नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। सरकार ने कहा देश में कच्चे तेल की स्थिति मजबूत है, रसोई गैस की घरेलू आपूर्ति भी पूरी तरह सुरक्षित। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कहा पेट्रोल डीजल तथा पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने गर्मी को देखते हुए समर एक्शन प्लान तैयार किया। नई दिल्ली के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कल योग महोत्सव 2026 का आयोजन करेगा और राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में भारतीय एथलीटों की शानदार शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में कच्चे तेल की स्थिति मजबूत है और एलपीजी की घरेलू आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित है। श्री पुरी ने आज लोकसभा में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधा के जवाब में सरकार के प्रयासों के बारे में यह जानकारी दी।
भारत के पास पर्याप्त गैस उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था है जिससे वे लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की स्थिति में भी बनाए रख सकता है। प्रत्येक घर और उद्योग के लिए ऊर्जा उत्पादन पूरी तरीके से सुरक्षित है। पहले भारत खाड़ी देशों से एलपीजी की लगभग 60% आवश्यकता आयात करता था और 40% का उत्पादन घरेलू स्तर पर होता था। 40% इज प्रोड्यूस्ड
डोमेस्टिकली। इधर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी कहा है कि देश भर में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में कंपनी ने कहा कि देश भर में उसके पेट्रोल पंप पूरी तरह चालू हैं और पेट्रोल डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। कंपनी का कहना है कि ईंधन वितरण भी सुचारू रूप से जारी है। कंपनी ने ग्राहकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ न लगाने की अपील की है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज अपनी विधानसभा क्षेत्र राजौरी गार्डन में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के अंत्योदय के सिद्धांत को साकार करने की दिशा में केंद्र की एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री सिरसा ने बताया कि इससे क्षेत्र के निवासियों को अपने घर के नजदीक ही परामर्श, मुफ्त दवाइयां और जांच की सुविधा मिल सकेगी।
आरोग्य मंदिर एक मिनी हॉस्पिटल की तरह काम कर रहा है। अब देखिए लगभग 125 किस्म की तो दवाइयां यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। लगभग 100 तरीके के टेस्ट जो हैं, कुछ इन हाउस हैं, रिपोर्ट मिल जाती है। इसी तरह हर तरीके की जच्चा बच्चा माँ के लिए हर तरीके का इलाज, प्रेगनेंसी के दौरान उसका इलाज, डिलीवरी के लिए लेबर रूम और यहाँ पर फर्स्ट इम्यूनाइजेशन भी होता है और छोटा इलाज अगर बर्न इंजरीज भी हैं उसका भी इलाज का इंतजाम यहाँ पर है।
दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने आज स्माइल योजना के अंतर्गत भिक्षा वृत्ति उन्मूलन और ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण तथा पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे विभिन्न सामाजिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान समाज के वंचित वर्गों को सम्मानजनक जीवन, पुनर्वास और बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न सुझावों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि स्माइल योजना का उद्देश्य भिक्षावृत्ति जैसी सामाजिक समस्या को समाप्त करना और बेसहारा लोगों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का भी सपना है कि दिल्ली में जब रेड लाइट हो तो कोई नॉक तो करे पर भीख मांगने के लिए ना करे, तो उनका भी एक सोच है कि सब लोग आत्मनिर्भर हो, लोग आत्मनिर्भर होने के बाद काम करें और दिल्ली प्रगति और देश प्रगति और उन्नति करके आगे बढ़े। प्रेजेंटेशन मैंने आज ली है तो उसके अनुसार लगभग 1500 लोगों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के बाद उसमें से कम 100 लोगों से भी ज्यादा 8 एनजीओ ने आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है।
दिल्ली पुलिस ने आज मादक पदार्थ तस्करी के मामले में एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से 55 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि मादक पदार्थ की आपूर्ति का पता लगाने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय से 1000 से अधिक छात्राएं केवल डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नहीं बल्कि आने वाले कल की भाग्य विधाता हैं। एक रिपोर्ट।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लंबा सफर तय किया है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ से बेटी पढ़ाओ तक और अब बेटी बढ़ाओ के संकल्प की ओर देश आगे बढ़ रहा है।
आज हमारा देश केवल महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, देश के विकास की बात नहीं कर रहा, बल्कि वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करता है कि देश विकास की उस दिशा में आगे बढ़े जिसका नेतृत्व महिलाएं कर रही हों।
मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि संस्था इंजीनियरिंग, विज्ञान और वास्तुकला जैसे क्षेत्रों में महिला को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वहीं इस अवसर पर उपस्थित दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी क्षमता और नेतृत्व का परिचय दे रही हैं। समारोह के दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत छात्राओं को स्नातक, स्नातकोत्तर और 31 PhD डिग्री प्रदान की गई। इसके साथ ही उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों और नेतृत्व क्षमता को सम्मानित करते हुए विश्वविद्यालय ने 2 कुलाधिपति मेडल, 15 कुलपति मेडल और 26 उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार भी प्रदान किए। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने गर्मी को देखते हुए समर एक्शन प्लान तैयार किया है। परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज ये जानकारी दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
NDMC के उपाध्यक्ष ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत NDMC के जल संकट वाले क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और जरूरत पड़ने पर वहां पानी के टैंकरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा गर्मी से निपटने के लिए 12 नए माउंट वाटर टैंकर खरीदे जा रहे हैं। RK आश्रम में NDMC का नया जल नियंत्रण कक्ष बनाया जा रहा है। इसकी भंडारण क्षमता 1,00,000 लीटर होगी। श्री चहल ने बताया कि वर्तमान में NDMC क्षेत्र में 37 वाटर ATM कार्यरत हैं। इनमें से 17 भुगतान आधारित हैं जबकि बाकी पानी उपलब्ध कराते हैं। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
दिल्ली नगर निगम के करोल बाग जोन द्वारा रेलवे ट्रैकों के किनारे पड़े पुराने कचरे को हटाने के लिए रात्रि के समय एक विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान नारायणा विहार रेलवे ट्रैक क्षेत्र में जमा कचरे को हटाया गया। निगम के उपायुक्त दिलखुश मीणा ने बताया कि नारायणा विहार रेलवे ट्रैक से लगभग 149 मीट्रिक टन कचरा हटाया गया। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान करोल बाग जोन द्वारा अब तक रेलवे ट्रैकों के किनारे से कुल 228 मीट्रिक टन कचरा हटाया जा चुका है। इस बीच दिल्ली नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त पंकज नरेश अग्रवाल ने आज दिलशाद कॉलोनी वार्ड का निरीक्षण किया और क्षेत्र में चल रहे स्वच्छता तथा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त आयुक्त ने निर्धारित स्थल पर निर्माण और ध्वस्तीकरण कचरे की संग्रहण की स्थिति का जायजा लिया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक उच्च स्तरीय चयन समिति का गठन किया है। इस पहल का उद्देश्य उन विधायकों को सम्मानित करना है जो सार्वजनिक सेवा और संसदीय प्रक्रिया के प्रति उत्कृष्ट प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि यह पहल दिल्ली विधानसभा के भीतर संस्थागत निर्माण के लिए एक आधारशिला के रूप में कार्य करेगी। दिल्ली के सांसदों ने आज राष्ट्रीय राजधानी में नव नियुक्त उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से भेंट कर उन्हें नई जिम्मेदारी की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सांसदों ने कहा कि श्री संधू के समृद्ध प्रशासनिक अनुभव और प्रभावी मार्गदर्शन से दिल्ली के विकास, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। इस अवसर पर प्रवीण खंडेलवाल, रामवीर सिंह विधोड़ी, मनोज तिवारी, कमलजीत सहरावत और बासु स्वराज उपस्थित रहे। भारतीय पैकेजिंग संस्थान ने आज नई दिल्ली में पैकेजिंग उद्योग के 6वें अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव अजय भादु ने किया। इस अवसर पर श्री भादु ने कहा कि डिजिटल तकनीक के कारण पैकेजिंग उद्योग तेजी से बदल रहा है। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के अतिरिक्त महानिदेशकों और उप महानिदेशकों का 2 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने देश भर में चलाए जा रहे विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में NCC के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना भी की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने एक विदेशी फिनटेक प्लेटफॉर्म से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी मामले में दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के 15 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। सीबीआई ने बताया कि फर्जी ऑनलाइन योजनाओं के माध्यम से हजारों भारतीय नागरिकों से करोड़ों रूपये की ठगी की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कृषि खाद्य प्रणालियों में कार्यरत महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में कृषि खाद्य प्रणाली 2026 में महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत ने महिला नेतृत्व वाली विकास रणनीति अपनाई है।
फसल को बोने, काटने, प्रसंस्करण करने और हाट बाजार में ले जाने जैसे सभी गतिविधियों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पशु पालन, वन्य उपजों के समुचित उपयोग तथा कृषि पर आधारित उद्यमों को चलाने जैसे अनेक क्षेत्रों में हमारी माताएं, बहनें और बेटियां अथक परिश्रम करती हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लगभग 9 करोड़ 32 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रूपये अंतरित करेंगे। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत विस्तार के पहले चरण का शुभारंभ किया है।
किसान कल्याण के लिए हम लोगों ने संपूर्ण जानकारी के साथ एक ही एआई डिजिटल प्लेटफॉर्म बन जाए भारत विस्तार, और इसलिए उसके प्रथम चरण को भी लॉन्च किया है, जिसमें किसान को सारी जानकारी एक फोन कॉल पर भी उसकी भाषा में देने का काम किया जाएगा। पिछले वर्षों में हमने एमएसपी पर भी गेहूं, धान, कपास, दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड खरीदी की है और किसान को सस्ते दामों पर खाद मिलना सुनिश्चित किया है।
नई दिल्ली में चल रहे विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता में भारतीय एथलीटों ने कल शानदार प्रदर्शन किया। एथलीटों ने अलग अलग स्पर्धाओं में पदक अपने नाम किए। एक रिपोर्ट।
पैरालंपिक चैंपियन प्रवीण कुमार ने पुरुषों की T44 ऊंची कूद स्पर्धा में 1.96 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की T42 ऊंची कूद में शैलेश कुमार ने स्वर्ण, राम सिंह भाई गोव पदियार ने रजत पदक और लोकेश मंत्रा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इस स्पर्धा में भारत ने क्लीन स्वीप भी किया। पुरुषों की डिस्कस थ्रो F11 F12 में मोनू ने लगभग 34.30 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। प्रवीण शर्मा ने रजत और संजय रेड्डी नीलम ने कांस्य पदक जीतकर भारत को एक बार फिर क्लीन स्वीप करने में सफलता दिलाई। महिलाओं की 100 मीटर दौड़ ट्रैक स्पर्धा में प्रीति पाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 3 दिन तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता का समापन कल होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
नई दिल्ली के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में कल योग महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की 100 दिन की उल्टे गिनती के शुरुआत का प्रतीक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महात्मा गांधी और ऐतिहासिक दांडी मार्च में भाग लेने वाले सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दांडी मार्च भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक गौरवपूर्ण अध्याय है। उन्होंने कहा कि नमक कानून के विरुद्ध यह शांतिपूर्ण आंदोलन सत्य, अहिंसा और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रतीक बना। और राजधानी में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल भी मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा देश में कच्चे तेल की स्थिति मजबूत है, रसोई गैस की घरेलू आपूर्ति भी पूरी तरह सुरक्षित। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कहा पेट्रोल, डीजल तथा पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने गर्मी को देखते हुए समर एक्शन प्लान तैयार किया। नई दिल्ली के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कल योग महोत्सव 2026 का आयोजन करेगा और राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता में भारतीय एथलीटों की शानदार शुरुआत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।